ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला आठवां अध्याय श्लोक नंबर 88। महाप्रभु और रामानंद राय के बीच वार्तालाप। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेम हैते, यही प्रेमार वश कृष्ण ओहे भागवते। परिपूर्ण परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति, भगवान कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति, यह प्रेम भगवत प्रेम हैते से ऐ प्रेमार उस भगवत प्रेम के वश नियंत्रण में कृष्ण भगवान कृष्ण कहे कहा जाता है। भागवते श्रीमद् भागवत में अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूर्ण प्राप्ति भगवत प्रेम से विशेष रूप से माधुर्य रस के द्वारा संभव हो पाती है। भगवान कृष्ण इस तरह के प्रेम के वश में हो जाते हैं, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया। तात्पर्य श्री प्रभुपाद माधुर्य रस के सबसे ऊंचे गुण की व्याख्या करने के लिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भौतिक तत्वों का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश में शब्द का गुण है, ध्वनि का गुण, वायु में ध्वनि और स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप, ये तीन गुण। जल में शब्द स्पर्श रूप और रस, इसका मतलब स्वाद है। और पृथ्वी में पांचों गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अभी देखा जा सकता है कि आकाश का गुण सब में है, वायु अग्नि जल और पृथ्वी में भी है। पृथ्वी में हमें भौतिक प्रकृति के सारे गुण मिलते हैं, यही बात माधुर्य रस पर लागू होती है। माधुर्य रस में दास्य रस, शांत रस, साख्य रस और वात्सल्य के अतिरिक्त वह माधुर्य रस के भी गुण पाए जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि माधुर्य रस के द्वारा भगवान पूर्णतया संतुष्ट हो जाते हैं। माधुर्य रस को श्रृंगार रस भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत का यह निष्कर्ष है कि भगवान की प्रेममय सेवा के संपूर्ण संयोग रूपी माधुर्य रस में भगवान पूर्णतया भक्त वश में होने के लिए राजी हो जाते हैं। माधुर्य रस की पराकाष्ठा है राधा रानी में देखी जाती है। अतः हम देखते हैं कि राधा कृष्ण की लीलाओं में कृष्ण सदैव श्रीमती राधा रानी के वश में है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वपदांतिकम् वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतः पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपां ताग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यते देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सब वैष्णव के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। इतना अच्छा लगता है यहाँ पर वैष्णव के एक ओशन सागर बहुत दिनों के बाद भगवान राधिका रमण की कृपा से मुझे अब सब वैष्णव का संग मिल रहा है। मैं कुछ दिन पहले वृंदावन में था, 4-5 दिन पहले रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर आए, मेरी ग्रेट फ्रूट प्रभु जी। वृंदावन में जब हम जाते हैं तो क्योंकि वृंदावन तो सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए घर है, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि वृंदावन इज माई होम। जो दादाजी का घर है वो पोतों का भी घर है, हम सब के लिए घर। तो वृंदावन छोड़ने की कभी इच्छा नहीं होती, लेकिन आज सवेरे जब राधिका रमण के दर्शन किए मैंने मंगल आरती में, तो मुझे लगा मैं अभी भी वृंदावन में हूँ, क्योंकि इतने सुंदर डीटीज, इतना हाई स्टैंडर्ड्स वर्शिप के, इतनी ब्यूटी सबके मन को मोहने लगे। कृष्ण का एक नाम है मनोहर, सबके मन को मोहने लगे। जितना हमारे हृदय में शुद्धिकरण होता है उतना ज्यादा हम कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकर्षित। प्रहलाद महाराज जब शंड और अमरक को उपदेश करते हैं तो बोलते हैं कि जैसे लोहा जो है चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, वैसे मेरा मन भगवान विष्णु के चरणों में आकर्षित है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा मन भी लोहा है लेकिन जंग लग गई है, तो बहुत रस्टेड होने के कारण अब आकर्षित नहीं हो रहा। प्लीज हे गोपीनाथ, हे श्याम सुंदर, हे राधिका रमण, मेरे मन को इस तरह से शुद्ध बना दो जिससे मैं आपके चरणों के प्रति तेजी से दौड़ने लगूं। जैसे महारानी कुंती श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में महारानी कुंती प्रार्थना करती है कि जैसे गंगा समुद्र की ओर तेजी से दौड़ती है, वैसे मेरा मन आपके चरणों में आकर्षित। यह आकर्षण जागृत करना यही जीवन का लक्ष्य है। और इस तरह भक्तों के संग में बैठ के भागवत सुनना, चैतन्य चरितामृत सुनना, यही तरीका है इस हृदय की जंग को निकालने का, इस रस्ट को निकालने का। इतना अच्छा लगा आज सवेरे यहां जप में, क्योंकि मैं अक्सर ट्रेवलिंग करता हूं, भ्रमण करता हूं, मेरा फेमस टेम्पल है इंडियन रेलवे फेवरेट टेम्पल, मैं रोज घूमता रहता हूँ। लेकिन जब भी मैं वैष्णव के संग में जप करता हूँ, जैसे आज रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और बहुत सारे ब्रह्मचारी जी बैठे थे, मोहन और चंद्र प्रभु, तो भक्तों के संग में जप किया तो मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली। चलो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हरि नाम चिंतामणि में कि अगर हम नाम में रुचि जागृत करना चाहते हैं तो उन वैष्णवों के संग में जप करना चाहिए जिनको भगवान के नाम में रुचि, कि नाम में रुचि, नाम में आकर्षण जागृत करना आसान नहीं है। जनरली ड्यूटीज के प्रति प्रेम नए भक्त को भी जागृत हो जाता है, क्योंकि अर्चक विग्रह बहुत सुंदर होते हैं, डेकोरेटेड होते हैं, ऑर्नामेंट्स फ्लावर्स, हमारे डीटी डिपार्टमेंट के डिवोटीज पूरे मेहनत से सजाते हैं, और प्रसाद के प्रति तो आकर्षण के लिए कोई पीछे की जरूरत ही नहीं है। नित्य सिद्ध प्रसाद प्रेम में कीर्तन में भी आकर्षण थोड़े समय बाद जागृत हो जाता है, क्योंकि मृदंग और हारमोनियम की आवाज है। लेकिन जप में प्रेम जागृत होने के लिए वैष्णव की विशेष कृपा चाहिए, क्योंकि जप में हम सिर्फ नाम की ध्वनि सुन रहे हैं, जस्ट द होली नेम। और क्योंकि हमारा मन इतना कंटेमिनेटेड है, कलुषित है कलयुग में, तो नाम के प्रति प्रेम जागृत आसानी से नहीं होता, समय लगता है। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। एक भक्त मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी मुझे 10 साल हो गए मैं जप कर रहा हूं, अभी भी जप में आकर्षण नहीं है। मैंने बोला घबराओ मत, मुझे 25 साल हो गए। मैं 1977 में इस्कॉन में आया, जब जुहू मंदिर में, उसमें मैं जप नहीं करता था, लेकिन श्रील प्रभुपाद के प्रवचन थे, श्रील गोपाल कृष्ण महाराज, श्री लोकनाथ महाराज से मुंबई में ही रहते थे ज्यादा, तो उन्होंने मुझे इंकरेज किया आप आओ प्रभुपाद का लेक्चर सुनो। तो मैं इतना महान था कि प्रभुपाद का लेक्चर सुनने के बाद भी जप शुरू नहीं किया मैंने, क्योंकि कंडीशनिंग थी। फिर 10 साल बाद लोकनाथ महाराज तो इतने उत्साहित थे, वो बोले थे आप कौन सी क्लास में हो? मैंने बोला मैं 9वीं क्लास में, आई मीन 9th क्लास। महाराज जी बोले 10वीं पूरी करो और बैलगाड़ी पार्टी में आ जाओ। कि मेरे को इतना गर्व था नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है, इसलिए मैं BHU में गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मुरली कृष्ण प्रभु की तरह 5 साल अविद्या एकत्र किया, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया। तो 84 से मैं बहुत सिंसियरली फुल टाइम, 87 से 30 साल 28 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं भी कह नहीं सकता कि मुझे जप में रुचि है, लेकिन फिर भी प्रयास करें। इसलिए आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं तो बहुत ऊंचा श्लोक है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं लेकिन मैं इसके बोलने के योग्य नहीं। कृष्ण प्रेम प्राप्ति माधुर्य रस, ये सब रसों का वास्तविक रियलाइजेशन तब होगा जब नाम जप अच्छा है, नहीं तो थियोरेटिकली हम शांत रस, तास्य रस, इसके ऊपर हम सेमिनार्स भी दे सकते हैं, मैंने दिए भी हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेकिन जब तक हमारा जप अच्छा नहीं होगा तो हमारा पॉइंट पावरफुल नहीं होगा, पावर पॉइंट से हम प्रेजेंट। इसलिए मैं हमेशा जप के बारे में बोलता हूँ ज्यादा, और मेरा ये विश्वास है, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हरि नाम चिंतामणि में कि नाम की महिमा पे मनन करने से नाम में रुचि जागृत होती है, व्हेन यू गेट एब्जॉर्ब इन थिंकिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। जैसे यहाँ इतना सुंदर अच्छा लगता है कि रोज सवेरे मंगल आरती के बाद करीब 2-3 मिनट के लिए नाम के बारे में पढ़ते हैं, नाम की महिमा, टिप्स ऑन हाउ टू चैंट। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है या बहुत तकलीफ में होता है तो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, आप मुझे ठीक कर दीजिए। ऐसी भगवान के नाम में रुचि जागृत करने के लिए एक डिस्परेशन, एक तीव्रता होनी चाहिए कि मैं भगवान के नाम को प्राप्त करने, उस कृपा को प्राप्त करने। एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि कैसे मुझे सफलता मिल सकती है, क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है सफलता को प्राप्त करने के लिए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत शॉर्ट संक्षिप्त में जवाब दिया, श्रील प्रभुपाद से डिजायर, जस्ट डिजायर, इच्छा, इच्छा रखना कि यस मुझे नाम में रुचि चाहिए, मुझे वैष्णव की सेवा करनी। ऐसे हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम वैष्णव निंदा से बचे। मैं भी इसका मानसिक रूप से कई बार शिकार बन जाता हूं, क्योंकि कभी कोई डिवोटी किसी दूसरे के बारे में कुछ कह देता है, और ऐसा नहीं कि मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन वहां बैठे हैं सुन लेते हैं गलती से, और फिर हम मानसिक रूप से उसके बारे में सोचने लगते हैं। बाद में ध्यान से एनालाइज करते हैं कि दोनों पार्टीज एक्चुअली सही है। जो एक भक्त कंप्लेन कर रहा है और जिसके बारे में कंप्लेन कर रहा है, गलती किसी की नहीं है, गलती कलयुग प्रभु की है। कलयुग भक्तों में फ्रिक्शन पैदा करता है। तो नाम में रुचि जागृत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि अनिंदत्वम, है ना, अदोषदर्शी, जस्ट डोंट ट्राई टू सी फॉल्ट्स, इवन इफ देर आर फॉल्ट। मैं ये नहीं बोल रहा किसी में दोष नहीं है, अगर दोष नहीं होते तो हम सब प्योर डिवोटी होते, हम सब राधा और कृष्ण के प्रेम में आंखों में आंसू भर के जप कर रहे होते, हमारे अंदर दोष है। लेकिन श्रील प्रभुपाद एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। श्रील प्रभुपाद ये बोलते हैं एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में आप अगर मरीज हैं, पेशेंट हैं, और दूसरे भी पेशेंट्स हैं, तो सब सबके अंदर बीमारी होगी। आपको आप कंप्लेन करें, प्रभु जी ये पास में नेक्स्ट बेड के ऊपर है, ये वॉमिटिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसे हॉस्पिटल में रखो जहां कोई बीमार नहीं हो। ऐसे बहुत कम हॉस्पिटल है, वी आर इन अ बिग हॉस्पिटल। प्रभुपाद इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO, और प्रभुपाद जी ने कई सारे अलग उनके असिस्टेंट डॉक्टर्स रखे हैं जो हरि नाम की दवाई हम सबको दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर्स कम होते हैं वार्ड में, तो सीनियर पेशेंट को भी डॉक्टर बना दिया जाता है। समझ में आया कि मैं अभी पेशेंट हूं, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ सब है, और मैं लोगों को कृष्ण प्रेम बांट रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं हरि नाम प्रचार कर रहा हूं। वो कैसे कि अभी देखा है कि बहुत कम है डॉक्टर्स, ड्यूटी पे ज्यादा नहीं आ पा रहे, तो जो बहुत साल से हॉस्पिटल को बोला था आप दवाइयां बांटना शुरू कर दो, क्योंकि सुनते सुनते उसको आदत हो जाती है कि खांसी में क्या देना चाहिए, वॉमिटिंग में क्या देना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ अस कैन थिंक दैट वी आर क्वालिफाइड टू गिव होली नेम टू अदर्स। आप में से कोई है जो सोच सकता है कि मैं पतित पावन हूं और सबको हरि नाम बांट रहा हूं, भक्त जीवों का उद्धार करने के लिए अहितु की कृपा से यहां पर है? वेरी फ्यू कोई सोच रहे, तो या तो महाभागवत है या महामूर्ख है, दो में से। मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे प्योर डिवोटीज नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में और हमें अधिकांश एक हो गए भी 10% यहां पर होंगे जो टोटली प्योर है, लेकिन मैं अपराध नहीं करना चाहता, जरूर कुछ तो होंगे, लेकिन अधिकांश डिवोटीज हम सब स्ट्रगलिंग न्यू फाइट्स हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये फिर आप बोलोगे हम ये इतने ऊंचे ऊंचे श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए, प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया जिससे हमें पता चले कि माधुर्य रस कितना ऊंचा है। प्रभुपाद बहुत सुंदर एनालाइज कर रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आकाश मिश्रित शब्द होता है, उसके बाद फिर शब्द और स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप और पृथ्वी में सब कुछ होता है। ऐसे शांत रस में एक गुण है, दास्य रस में जो शांत रस में वो भी है, और माधुर्य रस में सब पांचों गुण, ऐसे पढ़ना चाहिए, लेकिन जानना चाहिए कि इनका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन निरपराध जब से ही होगा बिना ऑफेंस के। तो हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं सब दोषों से भरा हुआ हूं, जितना हम अपने दोषों पर विचार करेंगे उतना निंदा की प्रवृत्ति से मुक्त रहेंगे, जितना हमारे अपने स्वयं की कमियों पर मनन करेंगे उतना ही हम आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा कर सकते। युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों को एक प्रोजेक्ट दिया गया था। युधिष्ठिर महाराज को बोला गया था पूरे राज्य में भ्रमण करके पता लगाओ कि आपसे बुरा कोई व्यक्ति है, आपसे बुरा कौन है। युधिष्ठिर महाराज गए और दुर्योधन को प्रोजेक्ट दिया गया था कि आपसे अच्छा कौन है, और दोनों का आंसर नेगेटिव आया। युधिष्ठिर महाराज बोले पूरे राज्य में मेरे से बुरा कोई नहीं, और दुर्योधन ने बहुत ईमानदारी से कहा मेरे से अच्छा कोई नहीं, मतलब उसके अनुसार ईमानदारी से कहा। तो ये एक्चुअली रियल, जो बाकी सब डिटेल्स है, मैं कैसे गाता हूँ, कैसे लेक्चर देता हूँ, मेरे कितने अनुयायी हैं, कितना मैं रिस्पेक्ट करते हैं, सब भक्ति से कुछ लेना देना नहीं, रियल है कितना मैं सब मैं अच्छाई देखता हूँ, कितना मैं इस भाव में हूं अदोष दर्शी अनिंदत्व। श्री रूप गोस्वामी बोलते द सिम्टम ऑफ एडवांस डिवोटी इज द फ्रीडम फ्रॉम द टेंडेंसी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों को दोष नहीं दे। और यही न केवल ये भक्ति के लिए लाभकारी है, प्रैक्टिकल लेवल पर कांग्रेगेशन को, हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग या इस्कॉन वर्ल्ड वाइड को एकत्र करने के लिए भी यही एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्योंकि अगर हम सब में दोष देखते हैं तो एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे में गुण देखते हैं तो हमें रहने की इच्छा बढ़ती है। और अगर दोष है, अगर आपको लगता है वो दोष है और वो व्यक्ति को हम मदद कर सकते हैं किसी तरीके से और वो सुनने की स्थिति में है तो प्रेम से बता सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है सार्वम भट्टाचार्य की। सार्वम भट्टाचार्य पहले भक्त नहीं थे, तो मायावादी थे और महाप्रभु को नहीं स्वीकार कर ले, उनके बहनों ही थे गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य बोल रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, सार्वम भट्टाचार्य बोल रहे थे मैं नहीं स्वीकार कर, कहां लिखा हाँ शास्त्रों में कहां लिखा है, मैं वेदों में कहां लिखा है। तो उन्होंने बताया कि भागवत में लिखा है कृष्णम वर्ण पिशा कृष्ण, और बहुत सारे पुरुष बताए महाभारत में बताए, नहीं नहीं मैं इसे नहीं सिखाता। तो गोपीनाथ आचार्य बोले आपको सिखाने से फायदा नहीं है, बंजर भूमि में बीज डालने से कोई फायदा नहीं है। तो, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब सार्वम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने पास अलग स्थान में ले गए, आपने संन्यास लिया 24 वर्ष की उम्र में, बहुत डेंजरस कलयुग है, मैं आपको ज्ञान दूंगा। तो सार्वम भट्टाचार्य अभी ऑब्वियसली थोड़ा गर्व था उनके अंदर, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है जो सारे ज्ञान के स्त्रोत्र हैं उनको ज्ञान देना चाहते थे। उनको उपदेश किया उन्होंने सात दिन तक वेदांत सूत्रों के ऊपर। महाप्रभु बिल्कुल शांत बैठे थे, महाप्रभु सिखा रहे थे कि अभिमानी व्यक्ति को अगर जीतना है तो स्वयं नम्र रहना चाहिए, अगर दूसरों का दोष भी हो। महाप्रभु तुरंत सार्वम भट्टाचार्य को उसी समय में स्मैश कर सकते थे वेदांत सूत्र के पॉइंट्स के ऊपर ही, लेकिन महाप्रभु बहुत पेशेंट थे। एक अच्छे प्रचारक का गुण होता है कि बहुत सब्र रहता है, बहुत वेरी पेशेंट। दूसरे पर एक डिवोटी छह सात महीने रामनवमी के दो दिन बाद प्रभुपाद के एक शिष्य ने शरीर त्याग किया, श्रील गोपाल कृष्ण महाराज भी कमरे में थे उस समय आखिरी दिन, अपने शायद फोटो देखा रसदार प्रभु। तो प्रभु जी फ्रेंच बैकग्राउंड से थे और उनके बहुत लंबे बाल थे, और उनके बाल कृष्ण के बाल भी लंबे हैं लेकिन वो सुंदर है, उनके बाल उतने सुंदर नहीं थे, तो लोग उनको बहुत दूर भगा रहे थे। प्रभुपाद आए तो वो प्रभुपाद से मिलना चाहते थे लेकिन प्रभुपाद लेकिन भक्त उनको दूर भगा रहे। एक बार क्या उनको इतनी इच्छा थी वो प्रभुपाद दौड़ते हुए आए और भक्त रोक रहे थे, प्रभुपाद जी बोले लेट हिम कम उसको आने। प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, प्रभुपाद जी उनके सिर के ऊपर हाथ फेरा थे, वेरी नाइस। नेक्स्ट डे क्लीन शेव फुल टाइम ज्वाइन हो गए, प्रभुपाद के आगे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। इसराइल में प्रीचिंग करते थे वो, और आप जानते हैं अंत में वो वृंदावन धाम में निशरीज। अभी इसी जनवरी के बाद से या मार्च से लेकर अभी तक में श्रील प्रभुपाद जी के चार शिष्य वृंदावन धाम के भगवत धाम गए। हमें खुशी भी है कि भगवत धाम गए, दुख भी है, और साथ साथ हमें सतर्कता बरतनी है और केयरफुल रहना है। जो भी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य अभी धरती पर हैं उनका संग लेना, आज से 20-30 साल बाद पता नहीं कितने शिष्य रहे, वी शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ देयर एसोसिएशन, उनके संग, उनके इंस्ट्रक्शंस। भी आपने शायद सुना होगा चार पिछले सप्ताह 5 दिन पहले पूरा प्रभु भी भगवत धाम से ले गए। मैं जब इसका मैं पहले आया 1977 में तो मैं जुहू मंदिर में जाता था, राधा रस बिहारी मंदिर, समय राधा गोपीनाथ मंदिर नहीं था कि मेरा घर मंदिर के पास में था। तो सुरभि प्रभु उस समय उनका ऑफिस वहीं पर था जुहू टेम्पल, और मैं तो एक छोटा बालक था इसलिए बहुत प्रेम दिखाते थे। कल राधा श्याम सुंदर मंदिर में उनका मेमोरियल था, उनके स्मृति में सब दीनबंधु प्रभु और सब सूरदास प्रभु भी थे, बहुत अच्छा उनका गुणगान कर रहे थे। तो बता रहे थे कि एक्चुअली सूरभि प्रभु जी पहले भारत में आए थे, वो आर्किटेक्ट थे, और ऐसे वो राधा कृष्ण टेम्पल्स में उनको इंटरेस्ट था, सेकेंड टाइम फिर आए, और किसी कारणवश वो श्याम सुंदर प्रभु से मिले। श्याम सुंदर प्रभु बोले कि मैं टेप रिकॉर्डर भूल गया, प्रभुपाद जी का लेक्चर है, क्या आपके पास टेप रिकॉर्डर है? बोले हाँ है। बोला ठीक है। फिर प्रभु जी आज थे 3 महीने पहले जब राधा श्याम सुंदर मंदिर का 40 साल पूरे हुए थे उसमें आए थे। तो बता रहे थे मैं जब आया तो श्याम सुंदर प्रभु से तो उनके संपर्क में रहा, और टैक्सी में भी गया, और एक टैक्सी में गया और 3 बार टैक्सी का भरना पड़ा। हरे कृष्ण, इसको उनके डिवोटीज सबको सेवा में लगाने में एक्सपर्ट होते हैं जो भी इसका मीनिंग हो। तो प्रभुपाद जी इनको देख के थोड़ा आश्चर्यचकित थे क्योंकि नए व्यक्ति थे। उनको अपने कमरे में बुलाया और पूछा क्या करते हैं, बोले मैं आर्किटेक्ट हूँ। ओह वेरी गुड, वी नीड सम आर्किटेक्ट। ये प्रभुपाद का स्टाइल था मैनेजमेंट का, बस आप करिए। सबसे दो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इंडिया में प्रभुपाद जी के 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे उस समय, एक मायापुर, वृंदावन और बॉम्बे। उसमें से 2 बड़े मंदिरों का पूरा जो आर्किटेक्चर का जो डिजाइनिंग और इतर सूरभि प्रभु जी ने किया। और प्रभुपाद जी बोले यू बिल्ड अ हाउस फॉर कृष्णा इन वृंदावन एंड कृष्णा विल बिल्ड अ हाउस फॉर यू इन गोलोक वृंदावन। आप कृष्ण के लिए यहां बनाइए, कृष्ण आपके। प्रभुपाद बोले एंड दैट हाउस इज वेरी गुड, आई कैन सी इट, मैं देख सकता हूं बहुत अच्छी। ऐसे भगवान का अरेंजमेंट है, कई प्रॉपर डिसाइपल के साथ हुआ है, हमें निंदा नहीं करनी चाहिए लेकिन सतर्क रहना चाहिए कि माया बहुत पावरफुल है। कुछ समय के लिए सूरभि प्रभु जी जो है वो भक्तों से अलग हो गए थे कई वर्षों के, और जब ये 40 साल पूरे हुए वृंदावन के सेरेमनी में तो भक्त ढूंढ रहे थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन किया मंदिर का उनका तो रहना बहुत जरूरी है। तो भक्तों ने पता लगाया वो कहाँ पर हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो बोले मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी वो आए, बहुत सुंदर ऑफरिंग दिया उन्होंने। और फिर हमें पता नहीं था कि शायद वो उनका वृंदावन में आखिरी प्रवचन होगा, और वो इंडोनेशिया में थे तो जब कैंसर हो गया, किसी तरह से भक्तों ने पता लगाया, कैसे पता मुझे डिटेल पता नहीं है, लेकिन एक भक्त ने स्पॉन्सर किया उनका विषय। वो 3 दिन पहले वृंदावन पहुंचे, तो थ्रोट कैंसर हो गया, हमारे हॉस्पिस के भक्त तक प्लानिंग कर रहे थे उनको हेल्प करने का, और 3 दिन वृंदावन में थे, और बहुत ही शुभ समय में ब्रह्म मुहूर्त के समय उन्होंने अपना देह त्याग किया, उस भगवत धाम चले गए। भक्त का जीवन हमेशा अच्छा ही है, हर सिचुएशन में मटेरियली स्पिरिचुअली भक्ति करना लाभकारी है। और अगर कोई भक्त थोड़ी भक्ति करने के बाद भक्ति के मार्ग से अलग भी हो जाता है तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी ओर अगर कोई भक्ति नहीं करता, सब कुछ अच्छा करता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, वर्णाश्रम की ड्यूटी अच्छी तरह कर रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई पाप नहीं कर रहा, तो भी वो श्रम है वही केवलम, उसका कुछ लाभ नहीं है। एनीवे मैं थोड़ा डिबेट हो गया, मैं नाम जप पे बोलना चाहता था, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट था। कूर्म रूप प्रभु की भगवत धाम गए, गायों की सेवा कर, अभी दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। एक है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर यानी हाई फाई जॉब है, पोजिशन है, पोस्ट है, यू नो, और इतने सारे पैसों से डीलिंग है, और एक गौशाला है जिसके लिए कोई कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है। कूर्म रूप प्रभु ने 1984 से 30 साल से सेवा को स्वीकार किया, गायों की सेवा को, जो गायों को कोई परवाह नहीं कर रहा, जो सड़क पे हैं या जो घायल हो गए हैं, जिसको लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं, उन गायों को ले आकर उनकी सेवा करना पर्सनली, क्योंकि उन्होंने वृंदावन में कृष्ण की गायों की सेवा की, रमण रेती इलाके में, अंत में भगवान ने उनको वापस अपनी लीलाओं में बुला लिया। पुरुषोत्तम मास में एकादशी के दिन वृंदावन धाम में, मैं उनसे कभी मिला नहीं था, लेकिन सिर्फ दो दिन पहले किसी ने बताया कि एक भक्त बहुत बीमार है। मैंने बोला नहीं, मुझे राधा कुंड जाना है जप के लिए। बोले नहीं, आप मिल के जाइए। मैं एक ही बार मिला उनसे, और हालांकि वो कष्ट में थे, बहुत आदरपूर्वक हर एक भक्त को प्रणाम कर रहे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो पेपर साइन किए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, अयोध्या वापस। ब्रह्मानंद प्रभु कितने ग्लोरियस, प्रभुपा जी इतना उनसे प्रेम कर रहे थे, ब्रह्मानंद प्रभु, गर्ग मुनि प्रभु, दोनों भाई जब वो पहले ज्वाइन हुए तो उनके मदर बहुत डिस्टर्ब थे। तो अगर आपके माता पिता दुखी हैं, आप फुल टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं, परंपरा में है ना। तो ब्रह्मानंद प्रभु, गर्ग मुनि प्रभु, उनके मदर बहुत गुस्से में प्रभुपाद से मिलने आए, और प्रभुपाद जानते थे, एक्सपर्ट, प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, जैसे वो आए प्रभुपाद ने बड़े प्रेम से बोला, जो मैं आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूं स्पिरिचुअल ज्ञान, वो आपको देना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है बच्चे को ट्रेनिंग देना, इसलिए आपको खुश होना चाहिए, आपको यू शुड बी ग्रेटफुल, आपको खुशी होना चाहिए। उनके माँ बोली कि मैं क्या दूं, मैंने तो अपने दो बेटे दे दिए, और क्या दूं। प्रभुपा जी बोले थैंक यू वेरी मच, मैटर इज क्लोज ना। फिर प्रभुपाद बोले ब्रह्मानंद प्रभु को, आप अपनी माँ के चरण की धूल लो, रिस्पेक्ट करो। तो ब्रह्मानंद प्रभु भी इतने ग्लोरियस, प्रभुपाद एक बार बीमार थे तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि मैं हॉस्पिटल में नहीं रहूं, हॉस्पिटल में ट्यूब्स और तो ब्रह्मानंद प्रभु डॉक्टरों से झगड़ के प्रभुपाद को बाहर लेकर चले गए। इसलिए प्रभुपाद ने उनके साथ ऐसे प्रकट किया, वृंदावन में ब्रह्मानंद प्रभु के भी स्वास्थ्य खराब था, कुछ सुझाव था कि उनको दिल्ली में ले आना है ट्रीटमेंट के लिए। दिल्ली अच्छा है लेकिन वृंदावन दिल्ली में पंजाबी बाग टेम्पल अच्छा है, लेकिन बाकी सब दिल्ली है। भगवान के अरेंजमेंट से वृंदावन धाम में ही उन्होंने देह त्याग किया। चाहे वो प्रभुपाद के शिष्य हो या शिष्यों के शिष्य हो, जो भी सिंसियरली थोड़ी भी सेवा करता है, कृष्ण इतने दयालु हैं, वो एक राई के दाने को पर्वत के समान बना देते हैं, ये कृष्ण की दया है। मैं नाम जप के बारे में थोड़ा सा बोल रहा था कि कैसे गहराई से मैं पुकारूं, जो आज प्रभुपाद बोल रहे हैं परपोट में माधुर्य रस में पहुंचने का, राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं प्रभुपाद, राधा रानी प्रभुपाद ही बोलते हैं, इन वृंदावन एवरीबडी चैंट्स राधे राधे, सब राधा रानी का नाम लेते हैं, एंड कृष्णा इज अ इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ राधा रानी। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा जो है राधा रानी के हाथ में औजार है। और आज के पर्व में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि राधा कृष्ण की लीलाओं में कृष्ण राधा रानी के वश में रहते हैं। तो नाम जप में हमें हमारा मेडिटेशन होना चाहिए कि मैं राधा रानी की कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, या राधा श्याम सुंदर की कृपा के राधिका रमण की। नहीं तो आप अटेंटिवली भी जप कर रहे हैं ध्यान पूर्वक, लेकिन अगर एक पुकारने की भाव नहीं आ रहा करता, अभी तक आपका जप पूर्ण नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ। एक प्रोपाइल बोलते हैं लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर। मैं कई बार जप के समय प्रीचिंग करते थे, कई छोटे बच्चों को देखते हैं जो प्रवचन में अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तब उनसे भी सीख सकते हैं। तो चिल्ड्रन आर ऑल्सो अवर गुरु, दे आर टीचिंग हाउ टू क्राई, हाउ टू क्राई। चलो गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद के एक सीनियर शिष्य हैं, वो इस बात पे बहुत जोर देते थे। बोलते थे कि अनलेस यू क्राई फॉर कृष्णा यू कैनॉट गेट कृष्णा। मैंने 1,00,000 डोनेशन दिया अभिषेक के लिए, बहुत अच्छा है, मैं ब्रह्मचारी बन गया, सब कुछ त्याग दिया, बहुत अच्छा है, मैंने 1,00,000 प्रवचन दे दिए, बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस तरीके से नाम लेना है कि भगवान को पुकार रहे हैं। एक एंग्जाइटी होनी चाहिए मुझे कृष्ण से मिलना है। मुझे वृंदावन में इसका अनुभव आया, आज से 2 साल पहले मैं वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर में जप कर रहा था। देखा राधा गोकुलानंद मंदिर बहुत सुंदर समाधि का इलाका है, वो क्वाइट रहता है, और वहां पर मैं जप कर रहा था। एकादशी का दिन था तो थोड़ा एक्स्ट्रा जप कर रहा था। लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है, विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर समाधि है, नरोत्तम दास ठाकुर। अचानक क्या हुआ कि एक बछड़ा अंदर आ गया वहां पर उस समाधि इलाके में, इधर उधर घूम रहा था, मिला क्या किस कारण से। उस तरफ बीच में एक नेट था, आयरन नेट, लेकिन देख सकते थे उस तरफ एक्चुअली उसकी माँ थी, वो बछड़े की माँ, और दोनों बिछड़ गए। बछड़ा घूम के यहां आ गया था, उसको पता नहीं था वापस कैसे जाना। अचानक उसने अपनी माँ को देखा तो दौड़ते हुए गया उधर, लेकिन बीच में फेंस तो नहीं जाती, और माँ भी आई लेकिन नहीं आ सकी। तो बच्चा रंभाने लगा, ये कमजोर बछड़ा है लेकिन वेरी लाउडली बस क्राइंग, और उसकी माँ फिर वो भी पुकार रही थी, और थोड़ी देर तक ये चल रहा था। एक्चुअली बहुत पास में आकर भी अपनी माँ के पास पहुंच नहीं पा रहा, बहुत ही विक्षिप्त अवस्था में। तो मैं सोच रहा था भगवान ने ऐसा क्यों किया, वृंदावन में कोई चीज साधारण नहीं होती, शायद भगवान गोकुलानंद मुझे सिखा रहे हैं कि आपको राधा रानी और श्याम सुंदर से मिलना है तो इस बछड़े की तरह आपको पुकारना होगा। बहुत जोर जोर से आंखों में आंसू आ गए। फिर उधर से एक एक्चुअली बाद में जो उसके जो भी ख्याल रखने वाले थे गए कि वो आए और बछड़े को ले जाने लगे। बछड़े को क्या लग रहा था कि मेरी माँ यहां है, तो उसको हम अपोजिट डायरेक्शन से लेके घुमा के ले आना था, थोड़ा दूर पड़ रहा, तो रास्ते में ही बैठ गए। अब जानते हैं गाय और बछड़े बहुत जिद्दी भी होते हैं, बैठ गए वहीं पर। तो बड़े खुशी बड़े मेहनत के साथ उसको उठा के हम लेकर गए, और जैसे अपनी माँ के पास पहुंचा तो दौड़ते हुए थन उससे दूध पीने लगा और बहुत प्रसन्न हो गया। तो मैं सोच रहा था कि राधा और श्याम सुंदर मेरे पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक फ्रेंड्स है माया का, मेरे मेटीरियल डिजायर्स का फ्रेंड्स है, जिसके कारण मैं राधा श्याम सुंदर के पास होकर भी इतना दूर हूं। मैं देख रहा हूं राधिका रमन को फिजिकल आंखों से, बीच में कोई पर्दा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं देख पा रहा क्योंकि मेरी आंखों में ही पर्दा है। मुझे मोतियाबिंद हो गया, मुझे कैटरैक्ट हो गया। तो कैटरैक्ट व्यक्ति जो है वो देखते हुए भी नहीं देख रहा। ये चैंटिंग का प्रोसेस है, मतलब कि इस कैटरेक्ट को निकालना है, पुकारना है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वन शुड चैंट विद कंप्लीट फेथ इन द होली नेम ऑफ कृष्णा, दैट कृष्णा विद ऑल ऑफ हिज ऑपुलेंसेस इज प्रेजेंट इन द साउंड ऑफ द होली नेम। कृष्णा अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ। श्रील गौर गोविंद महाराज एक कहानी बताते हैं, मैंने यहां पर बताई थी कहानी, वो सास और बहू की कहानी एक बार बताइए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कितने भक्तों ने सुनी है कहानी, कितने ने नहीं सुनी है। तो ठीक है, तो मैं रिपीट करूंगा। गुरु गोविंद महाराज बहुत बहुत ही सरल वैष्णव, इतने महान वैष्णव थे, क्योंकि 7 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया था प्रभुपाद से मिलने से पहले, और इतने भोले भाले। एक बार विदेश में गए कहीं पर, और वो उनको पता नहीं था, वो स्नान करने गए और एक शावर का बटन ऑन हो गया, उनको लगा अरे रेनफॉल आ गया, बरसात आ गया। बहुत ही सरल बालक जैसा स्वभाव था। तो गुरु गोविंद महाराज बताते हैं कि एक बार एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे और बंगाली में बोल रहे थे, आनंद बोलो हरी हरी, चलो बोलिए आनंद बोलो हरी हरी, हरी बोली वे भव पारी। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि आनंद से बोलो हरी हरी, क्या बोलो हरी 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 हरी, तो आनंद से हरी का नाम लो, हरी करी वे भव पारी, मतलब हरी आपको भवसागर पार। बहुत सुंदर प्रवचन। तब तब लोग अपने अपने घर में चले गए, और सुनने वालों में 2 माताएं भी थी, एक सास और दूसरे बहू। हम जानते हैं सास और बहू की बहुत सारी लीलाएं होती हैं, आप जो गृहस्थ आश्रम में अनुभव भी करते होंगे। तो वो दोनों घर जा रहे थे, और सास बहुत बुद्धिमान थे, चतुर थे, अनुभवी थे, लेकिन श्रद्धालु नहीं थे, और बहू थे बहुत भोले स्वभाव के थे, लेकिन उनको श्रद्धा बहुत थी। मार्ग में उनको एक नदी पार करनी थी और बाढ़ आ गई थी, कैसे पार करें, कोई बोट्स कोई नौका नहीं और स्विमिंग नौका नहीं। तो बहू को याद आया, महाराज जी बोला था प्रवचन में हरि का नाम लें, हरि का नाम लेने से तो सागर पार, भव सागर, ये इंडियन ओशियन था ऐसे भी क्वेश्चन नहीं, भव सागर। सीधा पानी में पैर रखा और बोलने लगे हरी 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 हरी, आप बोलिए हरी 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 हरी, देखते हैं कौन ज्यादा देर तक बोल सकता है। एक तरफ मैं अकेला हूं और आप 100 भक्त हैं, हरी 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 हरी, आप जीत गए, लेकिन ये अन्याय है क्योंकि बराबरी में मैच होना चाहिए। तो हरी हरी बोलते नदी पार कर ली, लेकिन सास हाँ मैं कैसे पार करूं, कैसे पार करूं, बोला आप पार करो, आपने सुना नहीं महाराज ने बोला प्रवचन में, हाँ मैंने सुना है, लेकिन क्या भरोसा, क्या गारंटी है, अगर नहीं हुआ तो अंदर गिर जाएंगे उसमें। तो दोनों माताएं सेम प्रवचन सेम स्थान पे सेम साधु से सुन रहे थे, कि दोनों में अंतर क्या था, श्रद्धा। तो जो भी हम गुरु के मुख से सुनते हैं, गुरु मुख का पद्म वाक्य चेतते कोरिए, वो श्रद्धा से सुनना चाहिए। और आपके ना सौभाग्य है यहाँ पर पंजाबी बाग में इतने सारे सीनियर वैष्णव आपको गाइड कर रहे हैं, मैंने कृष्ण प्रभु केशव मुरारी प्रभु सबके नाम बोलूंगा तो बहुत कम है, ये सब साधु हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं मेरे दीक्षा गुरु की बात सुनूंगा मैं, वो अच्छा है, लेकिन दीक्षा गुरु ने ही आपको शिक्षा गुरु और गुरु भाई और गुरु बहन का संग दिया है, वो भी तो भगवान के प्रतिनिधि है। इन वैष्णव के मुख से आप सुन रहे हैं, श्रद्धा से सुन रहे फिर कि कृष्ण कृष्ण उस वैष्णव के द्वारा मुझे ज्ञान दे रहे, श्रद्धा से। तथाकथित प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करना। मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि भगवत गीता का एक श्लोक पे बोल रहे थे, तेषां सतत युक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वक। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि वी शुड चैंट विद प्रीति, प्रीति का मतलब है प्रेम, प्रेम से, जैसे आप किसको बुलाते हैं प्रेम से, आप आज मेरे घर में आइए प्रसाद के लिए, है ना, प्रेम से बुलाते हैं। प्रेम से बुलाते हैं तो उस व्यक्ति के आने की इच्छा होती है। अगर आप किसी को फॉर्मली बुलाते हैं, प्रभु जी आप प्रसाद के लिए आइए 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 16 बार बोलूंगा आना तो आ जाना बस ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी लगेगा कि यह सिर्फ 16 बार मोती नीचे करने के लिए बोल रहा है, इट डज नॉट रियली नॉट सो ईगर। हम भी 16 माला जप करें इसलिए कि बस मोती नीचे हो जाए 7:15 से पहले, तो वो भी अच्छा है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसमें थोड़ा प्रेम ऐड करें, प्रीति, शचिनंदन महाराज जपा के लिए बहुत फेमस है, अपने सेमिनार्स में बोलते हैं ऐसे कि प्रीति से वन शुड कल्टिवेट अ रिलेशनशिप विद द इष्टदेव, जैसे आपके इष्टदेव राधिका रमण, राधिका रमण आपके जीवा के ऊपर दो घंटे आपको दर्शन दे रहे हैं, प्रीति से राधा रानी प्लीज करुणा करो माई करुणा भरी ते सनक सनातन बनी ते, राधा रानी दया करो श्याम सुंदर। राधा और कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं और कृष्ण की कृपा राधा रानी से ही मिलती। जो आज प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं वही चीज प्रभुपाद ने अमेरिका जाते समय जलदूत में लिखा था। ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष श्री प्रभुपाद जब अमेरिका के लिए निकले उसके 50 साल पूरे हो गए कलकत्ता में बड़ा बड़ा कार्यक्रम आयोजित है और बहुत बड़े बड़े इस्कॉन के लीडर्स आ रहे हैं, आप सब भी आमंत्रित हैं। बस अभी 10 दिनों में 13, 14, 15, 16 एक्सपेक्टिंग बड़े स्टेडियम में 20-25 हजार व्यक्तियों को कार्यक्रम अरेंज किया। तो प्रभुपाद कविता में लिखते हैं कृष्ण तव पुण्य हो वे भा पुण्य करी बे जबे राधा रानी खुशी हबे ध्रुवती बोली तो माता। बोल रहे हैं कि हे मेरे भाई आपको कृष्ण की कृपा तब मिलेगी जब राधा रानी खुश होगी। तो हमारा जपा में मेडिटेशन यही होता है कि हम राधा रानी को पहले खुश करें फिर कृष्ण, हालांकि दोनों अभिन्न है। तो प्रार्थना करनी चाहिए राधा रानी से जप में कि मेरा आपसे अनुराग हो, मुझे नाम में रुचि मिले। अल्टीमेटली सारे अपराध सारे ऑब्स्टेकल भगवान एक क्षण में दूर कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सब बाधाएं जो है वो कृष्ण की शक्तियां हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर सारा अंधकार दूर हो जाता है, वैसे कृष्ण की कृपा उदय होने पर सारे अनर्थ भी दूर हो जाते। लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि हम तन्मयता से पुकारे। द्रौपदी जब कठिनाई में थी तभी उसने भगवान को हृदय से पुकारा, गजेंद्र जब कठिनाई में थे तब उसने भगवान को याद किया। इसलिए कई बार कठिनाइयां जीवन में लाभ कर रही थी। मेरा तो अनुभव है जब कोई भक्त मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, सब जगह होता है ये, और अगर मैं सहन कर लेता हूं और दुखी भी होता हूं तो उस दिन मेरा जप बहुत अच्छा होता है। अगर हम उस स्तर पर तो नहीं है हरिदास ठाकुर की तरह कि हम कष्ट आने पे निंदा होने पे बहुत प्रसन्न रहे, ये स्तर तो सिर्फ हरिदास ठाकुर, लेकिन कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि हम सहन कर ले चाहे खुशी से या दुख से। अलग अलग स्टैंडर्ड है, एक हरिदास ठाकुर स्टैंडर्ड कि 22 मार्केट में पीटते समय मुस्कुराना, दूसरा है कि जो भी कटे 22 मार्केट तो होगा ही नहीं हमारे लिए, कृष्ण हमारा लेवल जानते हैं, तो किसी ने कुछ बोल दिया, और दूसरा लेवल है कि हम यू नो हम हमें बुरा लगे और हम लेकिन सहन करें, और उससे अच्छा है सॉरी उससे और खराब है कि हमें कोई कह दे और हम बदले में कुछ बोल दे। जब मैं सहन कर लेता हूं मेरा अनुभव है कि उस दिन जब ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सहन करना जो है वो नाम रुचि से रिलेटेड है, तरोगी व सहिष्णु। तो मैं अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा भक्तों को याद करता हूं, कुछ मेरे जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हैं, कुछ जो मेरे साथ हैं, और कुछ वो जिन्होंने किसी स्थिति के कारण कुछ कड़वा बोला है तो मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो थ्योरी मेरे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु बता रहे हैं त्रिनादपि सुनी छे ना, उसको प्रैक्टिकल लेबोरेटरी यहां पे मुझे ये डिवोटीज हेल्प कर, दे आर हेल्पिंग मी। तो ये जो सहनशीलता का भावना है वो बहुत लाभकारी, और कष्ट आते हैं तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। एक भक्त ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे आप अपनी अच्छी कार चला रहे हैं इनोवा या सफारी या टू व्हीलर चला रहे हैं हीरो होंडा, तो आप तो बड़े आसानी से बड़े खुशी चला रहे हैं, लेकिन अंदर आपने तो जो इंजीनियरिंग जानते हैं अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है। अरे मुरली कृष्णा तो उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था अभी तक भी याद है, मतलब भक्ति ठीक से नहीं कर रहे अभी तक भी याद है आपको खाली राधा कृष्ण के लिए कोई याद नहीं रहना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में सब रिसर्च किया जाता है कि कैसे सब अलग प्रकार के बेसिकली डीजल पेट्रोल कैसे रिएक्शंस होती हैं, थर्मोडायनामिक्स वो सब खराब किताबें मैंने भी पढ़ी थी, तो उसमें सब एक्सप्लोजन का आता है, कैसे पिस्टन कार्य कर रहा है। तो आप सोचते हैं मान लो अभी कार में बहुत दिनों से डीजल इंजन डाल रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, चलो कुछ दो दिन के लिए थोड़ा आमरस डाल देंगे। तो मान लो अपने टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में आमरस डालते हैं 5 लीटर, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बंद हो जाएगी। यस, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, अभी एग्जाम्पल भूल जाओ कार का, आमरस डीजल दोनों में से क्या पसंद है आपको ज्यादा? बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस व्हीकल के चलने के लिए डीजल ज्यादा अच्छा। ऐसे हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, परिवार में झगड़ा नहीं हो रहा, पैसे एकदम आसानी से आ रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, मतलब मैंगो फल पा रहा है, तो प्रगति नहीं होगी भक्ति। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आर्थिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कई बार फैमिली में डिस्प्यूट हो रहा है, कोई ऑफिस में जॉब में क्लैशेज हो रहे हैं, नेपाल या दिल्ली में भूकंप आ रहे हैं, ये सब जो है डीजल पेट्रोल की तरह, तो ये एक्सप्लोजन हो रहा है हमारे हृदय में। लेकिन उस एक्सप्लोडिंग आवाज से हम पुकारते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और जितना पावरफुल एक्सप्लोजन होगा उतना स्पीड तेजी से एक्सप्रेस हाईवे यमुना एक्सप्रेस बैक टू वृंदावन जल्दी पहुंच सकते हैं। ये कहते समय हो गया, तो यही दो तीन पॉइंट थे जो फेथ अटेंशन और लास्ट में ह्यूमिलिटी तम्रता, तो आप सब जानते ही कि तृणादपि सुनिच्छे। मैं कहानी कह के अंत करूंगा गौर लीला की, कि गौर लीला स्वीट होता है, लास्ट में स्वीट मिठाई खानी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने मित्र के साथ, शायद आपने सुनी होगी, नौका विहार कर रहे थे बोट में, और महाप्रभु ने एक ग्रंथ लिखा था न्याय के ऊपर, सुनिए आपने कहानी। एक बोट और उन्होंने किताब लिखी, महाप्रभु अपने मित्र को बोले आप सुनो सुनो मेरी किताब, उस किताब उनके मित्र जो उनके सहपाठी थे, क्लासमेट थे, सेम विषय पे, वो बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। महात्मा ने पूछा आप रो क्यों रहे? मैंने भी इसी विषय पर किताब लिखी, लेकिन आपकी किताब इतनी अच्छी है कि मेरी किताब कोई पढ़ेगा ही नहीं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। निमाई पंडित, उनका नाम था निमाई पंडित, अच्छा ये बात है। तो महाप्रभु ने अपने ग्रंथ को लिया और गंगा जी में बहा दिया। महाप्रभु वांटेड, महाप्रभु दिखाना चाहते थे कि कितना, कि दूसरों को सम्मान, दूसरों को आदर देना, अपने आप को निम्न मानना। अभी आज के जमाने में होता तो शायद कोई व्यक्ति दूसरे की पुस्तक फेंक देते हैं या दूसरे को फेंक देते, ना रहेगा बांस न बजेगी बांस। यार जब मैं बीएचयू में पढ़ता था, मुरली कृष्ण प्रभु के कॉलेज में, थोड़े साल पहले 20 साल पहले, इतना कंपटीशन होता क्योंकि मैं टॉपर्स में से एक था। जिन्हें टॉपर्स होते हैं हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, तो टेंशन रहता है ये कोई दूसरा फर्स्ट नहीं हो जाए। मैं हमेशा सेकंड था, पर एक बार फर्स्ट हो गया था, लेकिन फिर और डर हुआ क्योंकि सेकंड टाइम फिर सेकंड हो गया है ना, इतना कॉम्पिटिशन रहता है। हमारे लाइब्रेरी में भी मुझे याद है कुछ स्टूडेंट्स बुक्स लिमिटेड होते थे तो बुक्स को छिपा देते थे दूसरे को नहीं मिले, इतना प्रेम था आपस में। मैं आपको अपने हृदय की बात बता रहा हूं, आपको मालूम पड़े किसके सामने आप सुन रहे हैं, इतना ईर्ष्या होती थी। इन अमेरिका में मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए गया तो मुझे एडमिशन मिल रहा है, वो कॉलेज उसके जो डिटेल्स है मैं दूसरे को नहीं बताता था, क्योंकि वो भी अप्लाई करेगा मैं भी अप्लाई करूंगा, तो उसको अगर स्वीकार कर दिया गया तो मेरे को एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए एग्जाम्पल ऑफ त्रिनादपि सुनिच्छे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं त्रिनादपि सुनिच्छे। सनातन गोस्वामी को देखिए, कल उनका 3 दिन पहले तिरुभाव दिवस था, अपने मुरली कृष्ण प्रभु के मुख कमर से सुना, मैंने श्लोक में प्रभु जी का नाम देखा। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं गोविंदा बुलाओ, सनातन को बुलाओ प्रसाद के लिए। सनातन दौड़ते हुए आए और समुद्र के किनारे से जहां पर तप्त बालू एकदम गर्म रेणु पैरों में छाले पड़ गए, और महाप्रभु ने पूछा, सनातन तुम कौन से हिस्से से आए? सनातन बोले, मैं समुद्र के किनारे से। क्यों? सिंहद्वार, सिंहद्वार के पास एकदम शीतल ठंडा रास्ता है, वहां से क्यों नहीं आए? बोले, प्रभु जगन्नाथ के पुजारी मंदिर के बाहर और अंदर जाते रहते हैं, अगर वो मुझे देख लेते या मेरे को स्पर्श कर लेते तो वो अपवित्र हो जाते। मैं ये नहीं चाहता था कि वो अपवित्र हो, इसीलिए मैं समुद्र के किनारे। लेकिन आपके पैरों में छत मुझे पता ही नहीं चला, आप बुला रहे हैं, इतनी खुशी हुई। महाप्रभु इतने खुश हुए, महाप्रभु ने एक श्लोक बोला, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुमा देखे पवित्र हो देव मुनिगण। आप तो पूरे जगत को पवित्र करने वाले, देवता और मुनि भी आपके देखे पवित्र, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इतना तुच्छ मान रहे हो। महाप्रभु बोलते थे रूप सनातन को, देव छाड़, गिव अप योर ह्यूमिनिटी, अपनी नम्रता को त्याग दो। दैन्य को देख के फाटे मोर मन, मेरा हृदय फट रहा है, मतलब इतनी नम्रता थी। सनातन गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी टॉप मोस्ट है ह्यूमिलिटी में, जो ह्यूमिलिटी में टॉप मोस्ट है वो भगवान सबसे प्रिय है। तो आज हर दिन हम उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते कि मेरे को नम्रता का गुण दो, सहनशीलता का गुण दो, जिससे मैं आपका नाम ले सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमेंट देखा, कोई प्रश्न है किसी को या कोई कमेंट्स? जस्ट वन क्वेश्चन, सॉरी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा, आपने बहुत सारी चीजें बताई होली नियम के विषय में, और बहुत कुछ है सोचने के लिए। मेरा ये प्रश्न है, तो होली आपने से बताया कि आपने वो स्टोरी भी समझाई कि जो दुख है वो किस तरीके से कड़वे डीजल के समान है, जो दुख आते हैं परेशानियां आती हैं वो कड़वे डीजल के समान है, तो वो हमें भक्ति में और आगे ले जाने में मदद करते हैं। लेकिन मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि जब मन कभी परेशान होता है या हम कुछ दुख की वजह से गुजर रहे होते हैं, तो जब करते समय या भक्ति करते समय वो उसका मनन जो है वो ज्यादा चल रहा होता है, उसी में व्यक्ति उसी में ही मन जो है मतलब स्टक हो जाता है, तो फिर ध्यान करना भी ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर भक्ति के बाकी अंगों को भी पालन करने में और कठिनाई आती है, तो फिर जो पर्पस है वो भूल जाता है। तो इस चीज से कैसे आए कि उस लेवल पे एटलीस्ट आए कि दुख में हमें और इंकरेजमेंट मिले ले होली नेम की शर्ट लेने की।
इसलिए रिपीटेड हियरिंग बहुत जरूरी है, श्रवण। अगर हमने बार बार सुना होगा तो फिर हम थोड़ा संतुलित अवस्था में होंगे, और सीनियर वैष्णव का गाइडेंस भी लाभकारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उस स्तर पर हैं नेसेसरीली कि हम उसको उस तरीके से देख सकें, लेकिन एटलीस्ट थियोरेटिकली हम समझ सकते हैं कि जो आज स्थिति को तो हम बदल नहीं सकते, चाहे भक्त हो या भक्त हो, लेकिन इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को सुन के, महान भक्तों के चरित्र को पढ़ के हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिल सकती है कि मैं, मान लो मुझे किसी ने कुछ बोल भी दिया, मैं बोलूंगा कम से कम बोला ना, फिजिकली तो नहीं किया, फिजिकली कर भी दिया तो क्या किया, उतना तो नहीं किया इतना, 22 मार्केट में किया, 22 मार्केट में कर भी दिया तो उतना तो नहीं किया कि जीजस फांसी तो नहीं देनी, और फांसी दे भी दी फिर तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। वो होगा ही नहीं आपको, इतना तो व्यवहार नहीं होगा। जनरली हमारे जो भी डिफरेंसेज होते हैं सब जगह होते हैं, नहीं आपको लगता होगा मेरे मंदिर में ऐसा होता है, गोपीनाथ में होता है, श्याम सुंदर सब देगा, क्योंकि भगवान हर डॉक्टर कड़वी और मीठी दवाइयां रखता है, क्योंकि जो हेल्थ के जरिए, कल मेरे को ब्लड इन्फेक्शन हो गया तो 2-3 दिन पहले डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे नीम जूस पैक करके दिया, फ्री में दिया, है ना। जब ये कोई खुश नहीं होता, रसगुल्ला रहे तो खुशी होती है, लेकिन नीम जूस अगर मुझे बुद्धि है मतलब समझ है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो मैं बात से सहमत हूं कि मैं और आप उस स्तर पर नहीं है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, जब भी डिस्टर्बेंस वो विचार आते हैं, स्पेशली जिन डिवोटीज के साथ हमारा कुछ थोड़ा सा हो गया वो उसी मंदिर में है, तो फिर देखकर कई बार थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद की खुशी के लिए भगवान की शिकला में एकत्रित रहते हैं। और दूसरी तरफ भी आप जाए, मान लो आप इस्कॉन वर्ल्ड से बाहर भी हैं, तभी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो रहेंगे तो हर आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम में होते हैं, गृहस्थ आश्रम में होते हैं। इसलिए एक्चुअली सबसे हाईएस्ट स्थिति है वो भागवत में बताया गया। भागवत में बताया गया कि एक माता थी जो है ना, वो 24 गुरुओं में आते हैं ना, वो मंथन कर रहे थे और उनके कंगन की आवाज आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, सब कंगन निकाल दिए, फिर दो कंगन रखे, दो कंगन, फिर दो की भी आवाज आ रही थी, फिर उन्होंने निकाल दिया, फिर एक ही रखा, फिर आवाज बंद हो गई। तो बहुत हाई लेवल है कि बिल्कुल अकेले ही रहना, बस भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए भ्रमण करते रहना, तो क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं है, इसलिए हम या तो ब्रह्मचारी या गृहस्थ या संन्यास सेवानुष्ठ आश्रम में, और जो भी म्यूचुअल डीलिंग्स में डिफिकल्टीज आती है उनको भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना। मैं भी थियोरेटिकली बोल रहा हूं, आपकी तरह मैं भी डिस्टर्ब होता हूं, मुझे आपत्ति नहीं है सत्य बोलने में, लेकिन डिस्टर्बेंस के बाद मैं क्या करता हूँ, जब को बढ़ा देता हूँ, तो मैं रोज 16 करता हूँ, किसी ने कुछ बोलिया तो 20 कर देना, बहुत बुरा बोला तो 25 कर देना, ज्यादा बोला तो 64 कर देना। जैसे आप होम्योपैथिक दवाई में जाओगे तो 4x 8x, देखें कोई होम्योपैथिक दवाई ली है किसी ने, होम्योपैथी में होते हैं ना सर, क्या होता है 4x 8x होते हैं, एक्स एक्स यानी पावर, पावर को बढ़ाना, काली मोर नेट्रम ज्यादा लेना, तो ज्यादा अध्ययन करना, ज्यादा जब, ठीक है। तो माताओं को प्रश्न है किसी को, ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधिका रमण की जय।